मैंने उनमें कुछ चीजें देखी हैं जिनका मुझे यकीन नहीं होता।
मैं नहीं समझ पाया, मैं आपकी बात नहीं समझ पाया।
मैं क्या बताऊँ, अपने घर में नाही साहिबा को इस तरह से देखभाल कर रही हैं कि गोया उनकी बहुत करीबी अजीज हैं। मैं तो इस बात को बिल्कुल नहीं समझ सकी।
नाहिद,
इस्माइल साहब, मैं वैसी नहीं जैसा आप समझ रहे हैं।
आप किस तरह की हैं, किस तरह की नहीं, मुझे कोई सरोकार नहीं, लेकिन लगता है कि जब भी मौका मिलता है हमारी जिंदगी में जरूर मुदाखलत करती हैं।
मुर्तजा की कसम।
क्या, क्या 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 क्या, अपनी जबान से बाबा का नाम ना लो।
इस्माइल साहब, आपके वालिद मेरे शोहर थे, शरी और कानूनी लिहाज से मुझसे इस तरह बात ना करें।
मैं जानता हूँ कि आपके यहाँ रहने से हमारी जिंदगी में सब कुछ नाबूद हो जाएगा।
तुम्हें मेरी जिंदगी के बारे में क्या मालूम है? तुम्हें मेरी कौन सी मुसीबत पता है?
कोई मतलब नहीं है कि तुम पर क्या गुजरे। अपना सामान जमा करो, निकलो।
इस्माइल साहब, खुदा के लिए यहाँ शोर ना मचाइए।
वो खातून कब तक हमारे घर में रहेंगी?
जब तक ठीक नहीं हो जाती। जानते हो उसका बच्चा मर गया है?
क्या?
जच्चगी के वक्त उसका बच्चा मर गया। इस्माइल, नाही दाग दीदा है, उन्होंने हमारे यहाँ पनाह ली है। मुझे उनके माजी से कोई काम नहीं है, लेकिन तुम तो मुझे अच्छी तरह जानते हो ना, मैं अपने घर का दरवाजा दुश्मन पर भी बंद नहीं कर सकती।
मुझे ऊंची आवाज में बोलना नहीं चाहिए था, माफ कीजिएगा।
आप और मुत्तल साहब के दरमियान, माफ कीजिए, मैं तजस्सुस नहीं करती हूँ, लेकिन मैं जब कमरे में थी तो मैंने इस्माइल साहब की आवाज सुन ली थी। मुझे नहीं लगता सिर्फ बच्चा है इनके दरमियान की परेशानी थी।
मुर्तजा साहिबा करबला से वापस आने के बाद मलिहा साहिबा को सब कुछ बताना चाहते थे, लेकिन वो बहुत परेशान थे मलिहा साहिबा की तन्हाई के लिए। इसी वजह से वो आप लोगों को यहाँ लेकर आए।
हमें खैराती बाजार खोलना चाहते हैं। मैं शमसिया साहिबा से भी बात करूंगी। फिलहाल आप बाजार की तैयारियों में लग जाएं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। एक मिनट।
देखा, हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि हाजा साहिबा के पास से तुम मायूस नहीं लौटोगी। देखा,
बिल्कुल।
मैं बात करूंगी शमसियान साहिबा से, इंशाल्लाह कल से काम शुरू करते हैं।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका।
एक मिनट, देखूं किसका फोन।
हाँ,
हेलो, सलाम अलैकुम, क्या हुआ है?
हम लोग बैठे थे कि एक घंटी बजने लगी। मैं दरवाजे खोलने गई तो मैंने देखा आईफोन में से कि कोई अजनबी आदमी खड़ा हुआ है। कहने लगा नाहिद से काम है, मैंने भी नाहिद को बुला लिया। नाहिद उसे देखते ही बिल्कुल घबरा गई और कहने लगे कि दरवाजा ना खोलना।
तुम पुलिस को फोन करो, मैं अभी फौरन खुद को पहुंचाती हूं। ठीक है? शाबाश बेटी, अब मैं आ रही हूं, बस आ रही हूं।
कैसी रिपोर्ट? आप ही के मियां ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है और आप ही रिपोर्ट कर रही है, बहुत अच्छी बात है।
अस्तगफिरुल्लाह, मेरे मरहूम मियाँ का तुम्हारी जिंदगी से क्या वास्ता है जनाब?
क्या वास्ता था? मेरी साबिक बीवी से शादी कर ली, मेरी जिंदगी तबाह कर दी।
तुम्हें पहले मुझे बता देना चाहिए था कि करम तुम्हारा साबिक शौहर है।
मैं आपसे जो भी कहती आपके लिए परेशानी बनती, मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी।
वाकई? लेकिन मेरा दिल तो मुद्दतों पहले टूट चुका था। अब मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर सकती, क्योंकि कल हो सकता है तुम्हारी कोई नई बात सामने आ जाए और तुम दोबारा वजाहत देने पर मजबूर हो जाओ।
मलिहा साहिबा, मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहती थी।
लेकिन तुमने बहुत सी बातें छुपाई, बातें छुपाई।
तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ क्यों नहीं देते?
तुम खुद जानते हो क्यों नाहिद।
अब तो तुम खुश हो ना? बहुत खुश हो कि मैं दोबारा बेसहारा हो गई।
क्या वो तुम्हारा घर था जो अब बेसहारा हो गई हो?
खुदा ना खासा, तुम्हारा घर तो मेरा घर नहीं।
नाहिद, मैं तुम्हें चाहता हूँ।
तुम्हारी चाहत मेरे किसी दर्द की दवा नहीं।
आओ अपने शहर चलते हैं, दोबारा शादी कर लेते हैं।
इन परेशानियों में सिर्फ यही एक काम करने को रह गया है।
कहाँ? लगता है काशान तक पैदल जाना चाहती
शायद है। मैं काशान ना जाना चाहूँ तो?
नहीं भी फिर कहो मुझे नहीं चाहती, कहो जाऊँ मर जाऊँ।
नहीं चाहती हो तुम्हें, जाओ मर जाओ।
अगर तुमसे ये कहूँ कि तुम्हारा बच्चा जिंदा है तो फिर?
मेरा बच्चा जिंदा है?
हाँ।
सच कह रहे हो?
मेरे नाम पर तुम्हारे बच्चे का आई कार्ड ले लेंगे, उसे अपना ही बच्चा समझेंगे। नाहिद कहो ठीक है ना, मैं भी शादी वाला हारन बजाऊं, कहो ना।
पहले मेरा बच्चा लेके आओ।
नाहिद
बस है, मुझे अपना बच्चा चाहिए, इस वक्त मुझे अपना बच्चा चाहिए।
नाहिद बस भी करो,
सिर्फ और सिर्फ मुझे अपना बच्चा चाहिए।
काफी है नाहिद, बहुत ज्यादा परेशान कर रही हो, बहुत हो चुका, मुझे तो मार ही डाला।
क्या कर रहे हो?
अरे बहुत हो चुका, मुझे तो मार ही डाला तुमने, बच्चे की रट लगा रखी है, क्या हाल बनाया है तुमने मेरा।
मैंने ऐसा किया या तुम खुद जिम्मेदार हो?
इतनी तुम्हारी मिन्नतें की, इतनी मैंने मुश्किलात झेली, समझती हूँ मैं बहुत खुश हूँ इस वक्त, मेरे दिल में कोहराम मचा है, मैं जाहिर नहीं कर रहा।
बहुत ढीठ हो करम, बहुत ढीठ।
ऐसा कुछ नहीं करो कि बच्चे के वो देखने की हसरत खबर में ले जाओ।
मैं पुलिस में तुम्हारी रिपोर्ट लिखवाऊंगी।
आओ जाओ पुलिस के पास, जाओ जाओ, कह दो पुलिस से, जाओ कह दो, लेकिन ये याद रखना कि हार जाओगी और कभी भी अपने बच्चे को नहीं देख पाओगी। जाओ पुलिस के पास।
क्या कर रहे हो दीवाने पागल?
नाहिद काशान तक खूब अच्छी तरह सोच लो और मुझे जवाब दो, लेकिन अच्छी तरह याद रखना, अगर तुमने मनफी जवाब दिया तो मैं खुद को भी मार डालूंगा और तुम्हें भी।
बच्चा मेरा बच्चा जिंदा है।
तुम्हारी तबीयत ठीक है बेटी?
झूठ नहीं बोल रही हूँ, जिंदा है, वो नहीं मरा।
लेकिन करम ने तो मुझे उसकी खबर तक दिखाई है।
सब झूठ था, वो झूठी कब्र थी, उस कब्र में कुछ भी नहीं था नानी।
तेरा लाख लाख शुक्र है खुदा। चलकर पुलिस में उसकी रिपोर्ट लिखवा देते हैं।
नानी जान आप कहीं जाके ऐसा ना कर दीजिएगा।
क्यों क्यों, तुम एकदम घबरा गई?
करम अब बहुत खूनखार हो गए, वो कुछ भी कर सकते हैं, फिर वो बच्चा नहीं देगा।
अगर जरूरत पड़ी तो वो आकर इकरार भी करेगा।
रास्ते में बहुत पागल बना हुआ था, कह रहा था पहले मुझे मारेगा फिर खुदकुशी कर लेगा।
या इमाम रज़ा, हम किस बदमाश के हाथों फंस गए हैं? तुम अब क्या करोगी बेटी?
मैंने हाँ कर दी।
आप यकीन करें आपने गलती नहीं की है, आपने उसके हक में बड़ापन किया है, बहन की तरह पेश आई। मैं अगर आपकी जगह होता तो हरगिज उसे घर में कदम रखने ना देता।
मैंने इस वजह से कि उसने तुम्हारे बाबा से शादी की थी उसे यहाँ से जाने को नहीं कहा। मेरे दिल में उसका कीना भी नहीं है, वरना मैं उसे घर लेकर ना आती। उसने मुझे धोखा दिया, मुझे इसी का अफसोस है।
प्लीज उसके बारे में ना सोचें, किस्सा खत्म हो चुका है।
अरे यार
अरे सुन तो सही, ये हाशिम क्या कह रहा है?
मेरा नंबर है।
क्या कह रहे हैं?
तू नाही से मिलने गया, उससे कहा बच्चा जिंदा है, अरे तेरी खोपड़ी में भेजा है।
मैं क्या करता, सारी उम्र उससे इल्तिजा करता तब भी वो मेरे पास ना आती।
अगर तुम उसे बच्चा वापस कर दो तो तुम्हें एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी।
बच्चा क्या कहा?
तेरी खोपड़ी में क्या घूम रहा है?
माहरुख बच्चा तो मर चुका है, मानो खाक तले है।
पागल हो गया तू, उसके साथ शादी करके जिंदगी गुजारेगा या उसका पैसा चाहता है तू?
मैंने इतनी परेशानियां झेली है, खुद को ऐसे दलदल में फंसा दिया है कि उससे बाहर नहीं निकल सकता। क्या मुझे मेरी मेहनत का फल नहीं मिलना चाहिए?
अगर उसे मालूम हो जाए कि तूने झूठ कहा है तो वो पुलिस में रिपोर्ट कर देगी और बुरा फंस जाएगा तू।
इससे पहले कि काम खराब हो जाए मैं उसे मजबूर कर दूंगा कि मेरा हिस्सा मुझे दे दे।
क्यों नहीं
देखो अगर उसने मेरा हिस्सा नहीं दिया तो उसे कत्ल कर दूंगा। उसके बाद मुर्तजा साहब का पूरा माल और जायदाद किसकी हो जाएगी? खरम की, समझी?
इस वक्त सारी दुनिया तुझे बैठ के बड़ा साफ़ावा करेगी।
अरे
अब
छोड़ो।
फौरन पुलिस में लिखवा देंगे और तू जेल में डाल दिया जाएगा, समझे करम मियां?
देखो अगर करम सारबान है तो उसे मालूम है ऊंटों को कहाँ बांधना है।
कहाँ बांधेगा?
जल्द ही देख लोगी।
देखेंगे।
तराना साहिबा मत जाए, मेहरबानी करें।
नहीं हो सकता, मेरे वालिदैन बहुत खुश हैं, वो भी मुद्दतों बाद। मैं अपना प्रोग्राम नहीं बदल सकती। मैं ये नहीं चाहती कि लोग मुझे गैर मुस्तकिल मिजाज समझें। आज मेरी रात फ्लाइट है।
चाहते कि तराना सफर पर जाए।
मैं क्यों नहीं चाहता तुम सफर पर जाओ?
तो क्या मुझे अपने भाई के पास जाने की इजाजत?
बस करो इस बहस को गुलनाज, अब तय हुआ था कि नहीं बात करेंगे इस बारे में। हम
तुमसे बात कर रही हूँ, चलो तेहरान वापस चलते हैं।
मैं तुम्हारे हाथ का खिलौना नहीं हूँ।
इस्माइल तुमसे कह रही हूँ वापस आ जाओ।
वापस क्यों जाए?
मैं तुम्हारी दवाई घर भूल आई हूँ।
गुलनाज तुमने आजिज कर दिया है मुझे, बस करो गुलनाज।
मुझे इसमें बहुत से तल्ख वाकयात नज़र आते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हमें उम्मीद ही से सहारा मिलता है। हमें इंतज़ार करना सीखना चाहिए। एक मारूफ जुमला है, किसी दिन किसी जगह किसी वक्त सब्र करो, सब्र करो और सब्र करो।
डॉक्टर साहब आपके शुक्रगुजार हैं। ख़वातीन और हजरात, हम आपकी आवाज़ सुनने के मुंतज़िर हैं, बराए मेहरबानी अपने प्रोग्राम से राब्ता करें।
म्यूजिक।
सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम। मैं तो डर गई।
डरने की कोई बात नहीं है, मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लेके आया हूँ। मैंने कहा आपके पास आके बताऊँ, इतनी बुरी खबरों के बाद मैंने कहा कि आके खुद बताऊँ।
खैर है इंशाल्लाह, क्या बात है?
बात यह है कि तराना साहिबा नहीं गई, तेहरान में है।
सच?
कल रात मेरा प्रोग्राम था, अचानक उन्होंने प्रोग्राम में फोन किया, उसके बाद मैंने उनसे फोन पर बात की, आज रात उनके घर जाएंगे।
आज रात?
अम्मी अब ना लाएं, हम लोगों ने जब भी टाल मटोल किया है काम खराब हो गया है। अब मैंने फैसला कर ही लिया है, बहादुरी से काम लिया है।
मुबारक हो बेटा, इंशाल्लाह।
शुक्रिया।
अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो बच्चे को भूल जाओ।
खुदा से डरो, बताऊंगी मैं तुम्हें।
जाओ बुढ़िया जा।
करम, नारीन, करम। जब तुम कहोगे मैं तैयार हूँ।
हराम खोर थी। उसकी माँ क्यों मुखालिफ है?
वो सोचते हैं कि मैं एक अफसरदा आदमी हूँ जिसकी बीवी मर चुकी है, और अब मैं उनकी बेटी से शादी करके उसे भी हलाक कर दूंगा।
तुमने उनसे बात करने की कोशिश की?
जी नहीं।
तो बात करना चाहते हो?
मैं ना गुस्सवर हूँ ना ही अफसरदा, और इस मसले के लिए मैं जरूरी नहीं समझता है किसी को वजाहत पेश करूं और इत्मीनान दिलाऊं। मैं सोचता हूं वक्त गुजरने के साथ साथ ये मसला हल हो जाएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे कि मेरे बारे में गलत सोच रही है। मेरे ख्याल में वो निकाह में भी नहीं आएंगी।
तुमने इतने दिनों सब्र किया, कुछ और सब्र कर लेते, मैं तुम्हारा पैसा दे देता। ये लो, ये लो।
बस यही।
बहरोज मेरे अच्छे भाई, अगले हफ्ते तक अगर तुम्हारे पैसे अदा ना हुए तो दुकान पर आकर शोर मचा देना, ठीक है ना?
तुम परेशान कर रहे हो।
क्या तुम परेशान कर रहे हो? हमने ये बात हरगिज तय नहीं की थी। तुम रोज बरोज सामान महंगा कर रहे हो।
तुम मुझे दौड़ाना चाहते हो?
यहाँ बहरोज भाई, कौन था?
मकसूदी साहब, ये आदमी कौन था?
पहले यहाँ काम करता था, कुछ मसाइल पेश आ गए थे, उसे निकाल दिया गया। मरहूम हाजी मुर्तजा ने इन तमाम बरसों में सिर्फ उसी को निकाला था। आप जरा सोचें वो कैसा रहा होगा, कितना मक्कार आदमी रहा होगा उस वक्त।
आपसे क्या मांग रहा
जो
था?
जो एटिक हो जाए और ज्यादा नशा करे तो उसे क्या चाहिए पैसा?
यानी नशा ही था। लेकिन क्या आपने उसे निकाला नहीं था? वो पैसे क्यों मांग रहा था?
मोहतरमा, इज्जत बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ देना पड़ता है। वो ये भी समझ गया, एक दो मरतब आया और गिरियाजारी करने लगा, लेकिन मरहूम मुर्तजा ने उसे दोबारा नहीं रखा, लेकिन हर बार उसकी जेब में कुछ पैसे जरूर डाल दिए।
फिर तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ये यूं ही ब्लैकमेल करता रहेगा।
जी नहीं मोहतरमा, मैं कोई हाजी रऊफ तो हूँ नहीं, मैं उसके पर कतर दूंगा। मैंने उससे कहा है कि अगर दोबारा यहाँ दिखाई दिया तो मैं आओ देखूंगा नताओ उसे आदमी बना दूंगा। आप परेशान ना हो, मैं ऐसे लोगों को ठीक करना जानता हूँ। आप परेशान ना हो, मैं उसकी अकल 25 कर दूंगा। आपको कोई काम तो नहीं?
नहीं, बहुत शुक्रिया।
मुझे कई जगहों पर जाना है, हो सकता है आ ना पाऊँ। अगर कोई बात हो तो मुझे फोन कर लीजिएगा।
जी जरूर।
खुदा हाफिज़।
मुझे यकीन है वो कोई घपला कर रहे हैं।
क्या कर रहे हैं?
देखो, हिसाब किताब रसीदों के साथ सही नहीं बैठ रहा है। मैंने रसीदों का जो हिसाब किया तो 3 महीनों में 10 लाख तुमान का कोई पता नहीं चल रहा है।
10 लाख फरूख? ओहो, अब जाने भी दो फरूख, अभी तो तुम्हारी जिंदगी में सुकून आया, सारा सुकून गारत मत करना प्लीज।
काश मैं इन चीजों से वाकिफ ही ना होती।
तो ऐसा दिखाओ कि तुम्हें नहीं पता है।
ये नामुमकिन है, मैंने हाजिया साहिबा का नमक खाया है।
तो मकसूदी साहब का भी तो नमक खाया है तुमने, क्या फर्क करता है?
अगर मकसूदी के हाथ से मुझे तनख्वाह मिलती तो मैं यहाँ से चली जाती और मुड़ कर ना देखती। मैंने सारी मुसीबतें हलाल रोजी कमाने के लिए झेली हैं।
ठीक है, जाके बता दो, तुम्हें भी सुकून मिल जाएगा, पता भी चल जाएगा कि क्या करना है।
मैं कहने ही वाली थी, अचानक हाजिया साहिबा ने कहा कि इस्माइल की शादी है।
ठीक है, तो फिर शादी की बात बता देना, इसमें घबराने वाली कौन सी बात है?
नामुमकिन है, मकसूदी ने भी मुझ पर बहुत एहसान किया है।
फरूख, पैसों की वजह से लोग एक दूसरे की जान भी ले लेते हैं, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखना। अलैकुम अस्सलाम अली, तुम स्कूल क्यों नहीं गए हो?
मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने बहराम चचा को बता दिया, उन्होंने कहा ना जाओ।
तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम खेल रहे हो?
मुझे आपको भी बताना पड़ेगा क्या?
तुम्हारी बेचारी माँ सुबह से शाम तक काम कर रही है ताकि तुम किसी मकाम तक पहुँच जाओ, लेकिन तुम स्कूल में जाकर फुटबॉल खेल रहे हो। तुम्हारे अम्मू बहराम की भी अगर अक्ल होती तो वो अपनी बीवी बच्चों के लिए कोई काम करती। जरूरी नहीं है कि उनकी बात तुम्हारे लिए आखिरी हर्फ हो, वो तुम्हें बताए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है।
जी आप सही कहती हैं,
बहुत बदल गए हो, बस यही रह गया था इस घर में तो मुझे ये जवाब दो। बाबा आप जाइए अपने हाथ धो लीजिए, बाकी मैं खुद ही साफ कर दूंगी।
आप जाएं अपना काम करें, तुम घर छोड़कर चली गई और आज तक खबर नहीं ली। अब भी जरूरत नहीं है कि तुम मेरी फिक्र करो।
घर आने को मेरा दिल बहुत चाह रहा था और आप भी मुझे याद आ रहे थे। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते बाबा?
मैं अपना घर बार छोड़कर चला जाता।
मैंने तो अपना घर बार नहीं छोड़ा है, आप तो जानते कि बहराम कैसे पेश आता है, इतना सताता है कि जिंदगी अजीरन हो जाती है। जब से बहमन साहब अल्लाह को प्यारे हुए हैं, बहराम ने अपनी फैमिली को मुड़ के भी नहीं देखा है। इस घर में जैसे कोई मरियम रहती हो। अगर इस घर के दर दीवार ने मुझे देखा है, बहराम ने भी मुझे देखा है।
जिंदगी बनाने वाली औरत अपने बद अखलाक शौहर को राह रास्त पर ले आती है।
अब आपसे क्या बताएं अबू जान, बहराम सही से पैसे भी नहीं देता था। बहुत बार घर चलाने के लिए मुझे अपने अब्बा, अपनी अम्मी और अपने रिश्तेदारों से कर्ज लेना पड़ा।
बहराम को भी मालूम है?
हाँ जानते थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा उन्हें। और तो और इन दिनों में उन्होंने एक बार भी फोन करके ये नहीं पूछा कि तुम अपना और अपने बच्चों का पेट कैसे भर रही हो, तब भी कुछ होता, लेकिन कुछ नहीं।
दादा जान आपकी दवा का वक्त हो गया है।
आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना?
मुझे नहीं पता क्या मुश्किल है। बहमन के मरने के बाद मैं बर्बाद होता, लेकिन ये तो देख से भी ज्यादा चमचा गर्म निकला। मैंने अभी तक तुम्हें नहीं बताया था, मैंने देखा कि रातों को उठकर कोने में बैठकर रोता रहता था।
मैंने उसे एक बार कहा था कि चलो डॉक्टर चलते हैं, शायद उसने तुम्हें कोई दवा दे दी कि जिसकी वजह से तुम्हारे जहन को सुकून मिल जाए। उसे इतना गुस्सा आया मेरे पर, उसने कहा कि तुम खुद ही पागल हो।
अस्सलाम वालेकुम चाचा जान।
वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा?
जी हाँ, देखो मेरी तरफ, मेरी तरफ।
सलाम वालेकुम बाबा।
वालेकुम सलाम। इसे पहचानते हो? तुम्हारी बीवी है।
वो औरत जो अपना घर बार छोड़कर जाए उसे खुद ही वापस आना होता है।
ये मर्दानगी तुमने कहां से सीखी है? क्या मैंने कभी तुम्हारी माँ से तलख कलामी की? जब नाराज होती थी तो कौन उसे मना कर लाता था?
हर इंसान अपनी अपनी रविश रखता है बाबा।
जो तुम कह रहे हो ये मर्दों वाली बात नहीं है, बुजदिली है ये, ना मर्दी है ये।
बाबा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, खामखा गुस्सा ना करें।
ये फालतू बात नहीं कह रही है बेगैरत, तुम्हारे बच्चों का खर्चा कहाँ से पूरा करेगी? अगर उससे नाराज हो तो रहो, लेकिन बाप अपने बच्चों का खर्च तो उठाता ही है।
वो औरत जो रूठ कर चले जाती है उसे खर्चा नहीं दिया जाता।
बहराम,
या खुदा।
क्यों मार रहे बाबा मुझे?
इसलिए कि अपनी बीवी से इतना तो पूछ के इस दौरान कहां से खर्च चलाती थी उसे बताओ।
मैंने अपने अब्बू से कर्ज दिया, कसम खाया और कहा कि हम लौटा देंगे।
शर्म आ रही है? तुम भी अपने बाप के घर जाओ, अपना सामान तैयार करो, बच्चों को तैयार करो, बहराम तुम्हें लेने आएगा। जाओ तैयार हो जाओ। मेरी बात समझ में आ गई ना? मैं तुमसे पूछ रहा हूं।
जी बाबा जी।
अबूजान, अबूजान आपकी तबीयत ठीक नहीं है, पानी लेकर आओ जल्दी से।
जी अच्छा।
अबूजान कैसे? अस्सलामुअलैकुम।
अलैकुम सलाम। तुम फोन पर क्या क्या बक रही थी?
बैठेंगे नहीं?
मैं पूछ रहा हूँ वो क्या बकवास थी, क्या बक रही थी?
आए बैठे, मैं आपको बताती हूँ।
ये क्या बचपना है, मुझे इतनी रात गए दुकान पर बुलाए ताकि पानी पिलाओ? मैं पूछता हूं दुकान इतनी देर तक क्यों खुली हुई है? ये क्या है, पूछ रहा हूं ये क्या है?
3 महीनों का हिसाब किताब है। सही नहीं है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है।
तुम हो कौन जो मुझसे हिसाब किताब ले रही हो?
आज मैं सबको जाकर मलिहा साहिबा को बता देना चाहती थी, लेकिन सोचा कि इससे पहले आपसे बात कर लूं।
जरा बताएंगी क्या कहना चाह रही है? तुम क्या कहना चाहती हो?
ये जाली रसीदे हैं जनाब।
मोहतरमा देखो, मैंने तुम्हारी उम्र की बराबर मुर्तजा साहब के लिए काम किया है। इन बरसों में अगर मुझे कुछ करना होता तो मैं हेरा फेरी करके आज इस दुकान का मालिक होता।
लेकिन ये हिसाब किताब सही नहीं बैठ रहा है।
अपने कद से ऊंचा बोल रही हो, बड़ा निवाला निगलने की कोशिश कर रही हो, अटक जाएगा। तुमने सोचा है कि मुझे निकालकर मैनेजर बन जाओगी?
मैं कोई भी चीज हासिल नहीं करना चाहती। इस्माइल साबर हाज खानम ने मेहरबानी की तो यहाँ कर काम करने लगी। मैं जिसका नमक खाती हूँ उसे नमक हरामी नहीं करती। मैं ये बात इस वजह से नहीं कर रही हूँ कि आपको पकड़ लूँ। इत्तेफाकन मेरी समझ में आ गया है, लेकिन जब से मेरी समझ में आया है मैं चैन की नींद नहीं सो सकी।
नहीं सोई तो मैं क्या करूँ? ये भी जान लो, अगर एक लफ्ज किसी को बताया तो ऐसा काम करूंगा कि पछताओगी और तुम्हें लोगों के घरों में जाकर बर्तन धोने पड़ेंगे।
जी, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ।
ठीक है, कल आना, हिसाब किताब करूंगा तुम्हारा।
ठीक है, आ जाऊंगी, लेकिन पहले हाजा साहब और इस्माइल साहब के पास जाऊंगी और इसके बाद आपके पास आऊंगी।
मुझे किस चीज से डरा रही हो?
पहले खुदा और बाद में बंदे खुदा से।
खुदा की बंदी, ये बातें तुमने हाजिया साहिबा के मकतब में सीखी हैं? हाँ,
मुझे आप पर बहुत अफसोस है।
कहाँ, रुको तो जरा, रुको रुको, ठहरो।
अगर आप मुझे परेशान करना चाहते हैं तो कसम खुदा की शोर मचा दूंगी। हटे, जाने दे मुझे।
बकवास कर रही हो, आओ इधर, फोन करो।
किसको फोन करूं?
हाजिया साहिबा को फोन करो, मेरे पास भी बहुत सी बातें कहने के लिए। अब खड़ी हुई मुंह क्यों तक रही हो? तुम क्या जानती हो बदबख्त? मैंने अपनी सारी उम्र इस घरानी की खिदमत में फना कर दी। उन लोगों ने मेरी प्यारी बच्ची की जान ले ली। मेरा बेटा सात समंदर पार भूख से मर रहा है। मेरी बीवी घर के एक कोने में पड़ी रो रही है। उसके आसाब कमजोर हो चुके हैं। एक मर्तबा भी उनमें से कोई नहीं आया हमारी खैरियत पूछने कि मकसूदी तुम कैसे हो, तुम्हारा बेटा सात समंदर पार क्या कर रहा है, उसका गुजारा कैसे चल रहा है, मोनिस की दवाओं और इलाज के पैसे कहां से आते हैं, तुम जिंदा कैसे हो। किसी ने एक बार नहीं पूछा, इस बड़े आदमी से लेकर उस छोटे लड़के तक, कि तुम आखिर खुद को किस पर फिदा कर रहे हो।
तो मेरा हिसाब से क्या ताल्लुक है?
अगर जाकर मेरी शिकायत करोगी और मुझे परेशानी हुई तो वो लोग अपनी आबरू बचाने के लिए ही सही मेरा साथ देंगे, क्योंकि उनके पास एक चोर की कमी है जिसको तुम सामने ला रही हो। लेकिन ये जान लो, ये आग सिर्फ तुम्हें जलाकर राख कर देगी, तुम्हें और तुम्हारी औलाद को।
ये घराना तो सबकी मदद करता है। आपकी मदद क्यों नहीं की उन्होंने?
देखो, मुर्तजा हमारी सात पुश्तों के लिए अजनबी थे। उन्होंने दुकान खोली और घर खरीद लिया, लेकिन जब मेरी बारी आई तो न जाने क्या होने लगा। कहते थे इंशाल्लाह खैर है। ये लोग अजनबियों की मदद करते हैं, अपने रिश्तेदारों को पलट कर भी नहीं देखते, क्योंकि इस तरह दिखावा ज्यादा होता है। अपनों से क्या मतलब? क्या इंसान अपने रिश्तेदारों की मदद करता है? अगर कर दे तो लोग कहते हैं कि इसका फरीजा था। बताओ फरोख साहेबा, फरोख साहेबा, नहीं नहीं मोहतरमा अलीपुर, एक महीने तक रुक जाओ। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मेरे सर से पानी गुजर चुका है। मुझे मोनिस की फिक्र है, अगर उसको मालूम हो गया तो वो अपनी अकल खो बैठेगी। मुझे एक महीने की मोहलत दो, मैं पैसा लौटा दूंगा। ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करता हूं।
कैसा लग रहा हूं?
जबरदस्त, खुदा नजर बस से बचाए, माशाल्लाह। उसकी माँ से बात की तुमने?
नहीं, बात कर लूंगा, आप इतना परेशान ना हो।
इस्माइल, इस बात में टाल मटोल ना करो बेटा।
अच्छा, बस एक बात है, तराना के घर वाले मुनिस फूफी के बारे में कुछ नहीं जानते।
तुम्हें कुछ मालूम है कि क्या कर रहे हो?
हम लोग तो यूं भी उनको मनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अगर अब तराना की वालदा ये जान जाएं कि मुनिस फूफी मेरी साबिक सास हैं और उनसे जाकर बात करें तो मामला ठंडा पड़ जाएगा बिल्कुल।
अगर तुम सच्चाई से पेश आओ तो खुदा तुम्हारे लिए सब कुछ फराहम कर देगा बेटा।
जी हाँ, आप सही कह रही हैं, लेकिन ये तराना की भी दरख्वास्त है, वो भी यही चाहती है। उसने कहा कि शादी के बाद वालदा को धीरे धीरे मना लूँगी।
पता नहीं, बहरहाल तुम्हारा काम सही नहीं है।
तो मैं क्या करूं अम्मी, आप चाहती हैं मैं अपने हाथों से अपनी किस्मत फोड़ लूं?
वहीद, कुछ बचना नहीं चाहिए, सब कुछ उठा लो।
जी साहब।
ठीक है, और ये भी हो गया।
आपने क्यों जहमत की? बहुत बहुत शुक्रिया।
देखिए मोहतरमा, मैं गुज़श्ता रात जरा तेज बोल उठा, लेकिन आपकी बातों ने मुझे बेदार कर दिया, मुझे नींद से जगा दिया। लेकिन इतना जान लें कि मैं चोर नहीं हूं। देखिए, मेरी नियत पर शक ना करें साहिबा, बाज औकात ऐसे हालात पेश आते हैं जो इंसान की नियत बदल कर रख देते हैं।
ठीक है, इसके बारे में बात ना करें, ठीक है?
ठीक है, बेहतर। हमें क्या करना है? कमाली साहब का सामान भेज दिया, और किसका बाकी रहा है?
महदवी साहिबा की मेज नहीं भेजी।
ओह, अगर देर हो जाए तो शोर मचाने लगेंगी ये महदवी साहिबा।
मकसूदी साहब, मैं इस हफ्ते के आखिर में आपकी इजाजत से छुट्टी लेना चाहती थी।
इसी हफ्ते के आखिर में?
जी हाँ।
मैं शहर से बाहर जाना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा, आप चली जाइए।
क्या आप लोग शादी में नहीं आएंगे?
तकरीब? कौन सी तकरीब?
इस्माइल की शादी की तकरीब।
अच्छा, तो उसकी शादी है, बहुत बहुत मुबारक हो। दुल्हन कौन है?
तो आपको मालूम नहीं है क्या?
क्यों नहीं, इस्माइल ने मुझे कुछ बताया था, लेकिन वो मोनिस की वजह से बहुत कम बोलता है। दुल्हन वही नर्स है ना, उसका नाम क्या है?
तराना साहिबा, वसूख साहिबा।
वसूख साहिबा, मोनिस भी कुछ कह रही थी, तो इस्माइल की शादी है?
मेरा ख्याल में कोई तकलीफ नहीं होगी, लड़का और लड़की दोनों रजिस्ट्रार के पास जाकर बात कर लेंगे और उसके बाद मेहमानों को खाना खिला देंगे।
अच्छा, तो हुसैनी के दफ्तर में जाएंगे?
मुझे नहीं मालूम, वो यहीं कहीं करीब है।
हुसैनी मेरा दोस्त है, उसको फोन कर दूंगा कि खुतबे निकाह के वक्त किसी चीज की कमी ना होने पाए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, कुछ देर में आऊंगा।
मैंने जहमत दी आपको, माजरा चाहती हूँ भाई, आपने मेरी वजह से अपना प्रोग्राम तब्दील किया।
कोई प्रोग्राम नहीं था, मैं इंजीनियर साहब का इंतजार कर रही थी ताकि साथ में खाना खाएं।
जब से इंजीनियर साहब से मुलाकात हुई है, मैं मुनासिब मौका तलाश कर रही थी कि आपसे बात करूं, लेकिन आज तक मुझे फुर्सत ना मिल सकी।
इस वक्त भी आपने खाह मखाह में जहमत की है, आपको इंजीनियर साहब और तराना से काम है, मैंने खुद को इस किस्से से अलग कर लिया है।
वसूख साहिबा, दो जवान शादी करना चाहते हैं, हम बड़ों का ये फरीजा है कि उनकी हिमायत करें, उनका साथ दें, बिलखसूस तराना बेटे का, एक माँ की हैसियत से आपको उसके साथ होना चाहिए।
आप बुरा ना मानिएगा हाजिया साहिबा, तराना ये बहुत जल्द समझ जाएगी कि उसका इंतखाब गलत था।
तो आप यहाँ इस इंतजार में बैठी हैं कि अपनी बच्ची को नाकाम होता देखें?
अगर मैं अपनी बच्ची को नाकाम होता देखूँ तो क्या अच्छी माँ हूँ?
मेरा मतलब ये नहीं है, फर्ज करते हैं कि खुदा नखास्ता ये शादी नाकाम हो जाती है, लेकिन फिर भी आपको अपनी औलाद के साथ होना चाहिए, اپنے اولاد کی تنبیہ کرنے کے لیے انسان کے پاس ہزاروں طریقے ہیں، لیکن اپنی محبت سے بچوں کو محروم کرنا، وہ بھی ان کی زندگی کے اہم ترین دن میں، اچھی بات نہیں ہے۔ آپ اسے دو ٹوک الفاظ میں کیوں نہیں بتا دیتی کہ آپ اس شادی کے حق میں نہیں ہیں، کہ اگر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ پیش آیا تو وہ بعد میں نہ کہے کہ کسی نے میری رہنمائی نہیں کی۔
آپ کے بیٹے اور ترانے نے سارے پروگرام بنا لیے ہیں اور آگے بڑھ گئے ہیں، میرا ہونا یا نہ ہونا ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے۔
میرے خیال میں ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ شاید بظاہر ایسا لگ رہا ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں بچوں کے دل میں طوفان مچا ہوا ہے، بالخصوص آپ کی بیٹی کے دل میں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ بیٹی زندگی کے اہم ترین دن میں ماں اس کے پاس نہ ہو؟
میں نے اپنے اکلوتی بیٹی کی شادی کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا تھا، پہلی دفعہ اسے دھوکہ ہو گیا اور اس مرتبہ۔
وسوخ صاحبہ، میری بہن، ہم لوگوں کو یقین کر لینا چاہیے کہ ہمارے بچے بڑے ہو چکے ہیں، ہو سکتا ہے ان کا ذوق ہم سے الگ ہو، ہمیں بس یہ دیکھنا ہے کہ وہ خلاف شریعت کوئی کام نہ کر سکیں، وہ لوگ بھی عقل رکھتے ہیں۔
اور اگر آپ کا بیٹا کسی ایسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے جس کو آپ پسند نہیں کرتی، تو کیا آپ باتیں کرتی ہیں آپ؟
ہاں، میں یہی کہتی، میں ان کی صحیح رہنمائی کرتی، لیکن فیصلہ انہیں پہ چھوڑ دیتی، میں بزرگ ہونے کی حیثیت سے ان کے ساتھ رہتی تاکہ وہ لوگ وہ کام کر سکیں جسے وہ کرنا چاہتے ہیں اور اس میں کامیاب ہوں۔
ارے سیٹی نہ بجاؤ، وہ جاگ جائے گی۔
ارے یہ سونے کا کون سا ٹائم ہے؟
ابھی تمہارے آنے سے پہلے آنسو بہا رہی تھی، یہ لو، یہ میرے کفن و دفن کا پیسہ ہے، میرے پاس صرف یہی ہے، تم جس طرح سے چاہو اس کا بچہ لا کر اسے دے دو۔
یہ کتنا پیسہ ہے؟
سونے اور سکوں کے ساتھ ملا کر 5 ملین ہے، کافی ہے۔
جی ہاں، بہت زیادہ ہے۔
بچے کو کتنے میں بیچا تھا؟
شاید اتنی ہی رقم میں بیچا ہوگا۔
کرم، قرآن پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ کہ یہ پیسہ ناہید کا بچہ لانے کے لیے لے رہے ہو۔
ہائی، یعنی اس گھر میں میرے بات پر اعتبار کرنے والا کوئی نہیں ہے؟
اس وجہ سے کہ تم نے خود کو بہت سستا فروخت کیا ہے۔
میں جو بھی ہوں اتنا گرا ہوا نہیں ہوں کہ ایک بڑھیا کی جیب خالی کروں۔
ناہید شمع کی طرح پگھلتی جا رہی ہے، کچھ نہیں کہتی۔ اگر اب بھی تمہارے دل میں اس کے لیے تھوڑی سی محبت ہو تو اس کا بچہ واپس لا کر دے دو۔
ہیلو، میں حرق صاحبہ، میں کرم بول رہا ہوں، 5 عدد مل گئے ہیں، دیکھو تم شرافت سے بچے کو لا کر دے دو ورنہ کباڑا کر دوں گا تمہارا، خامخواہ پریشانیاں مت کھڑی کرو، میں تمہارا پیسہ بھی لا کر دیتا ہوں، لیکن اگر تم نے کل رات تک بچہ لا کر نہیں دیا تو پولیس کے ساتھ آؤں گا، تمہاری بے عزتی بھی کرواؤں گا، سمجھ گئی؟ ٹھیک ہے، ناہید سے کہہ دینا کہ کل میں رجسٹرار کے دفتر آ رہا ہوں۔
وہ اپنے پلنگ سے بھی اتر نہیں سکتی۔
ہماری بھابی کو تو بہکا دیا، میری بیوی کے بارے یہ ہے نا،
اس سے ملنے دیجئے۔
میں نے اس قصے کی جڑوں کا پتہ لگانے کی کوشش کی اور آج یہاں تک پہنچ گیا ہوں، یہاں پر نمائش میں یہ عورت۔
ملیحہ صاحبہ، بہتر ہوگا کہ آپ اپنی تقاریر پر نظر ثانی کر لیا کریں کچھ عرصے میں۔
اکثر بہنوں نے یہ کہہ دیا کہ آج نہیں آ پائیں گی۔
پتہ نہیں اتنی تہمتیں لگانے کے بعد پولیس رات سے کیسے گزرو گی یا حضرت عباس۔
کاش میں گونگا ہو گیا ہوتا اور ٹیلی فون پر ان سے اتنی بحث نہ کی ہوتی۔
انسان صرف اس جملے پر عمل کرے تو ہزاروں کتابیں پڑھنے سے بہتر۔
ارے رکو، کہاں جا رہے ہو؟
اب ہٹ جاؤ بڑھیا، دروازہ کھولو جلدی کر۔